युगों युगों जग गाता है, महिमा का पार न पाता है। युगों युगों जग गाता है, महिमा का पार न पाता है। युगों युगों जग गाता है, महिमा का पार न पाता है। ऐसा गायन योग्य बनाया आपने वो मीठी मम्मा, रूप वो पूजन योग्य रचाया आपने वो प्यारी मम्मा। दिव्य कर्म करना सिखिलाया आपने वो मीठी मम्मा। जग रातों में मामा कह भक्तों ने फरियाद किया, मंदिरों में तुमको पूजा देवी का दीदार किया। ज्ञान रतन धन दिया जो इतना, श्री लक्ष्मी का मान मिला। विद्या बुद्धि सम्मति दी जो सरस्वती सम्मान मिला। खुद को ऊंचा श्रेष्ठ बनाया आपने वो मीठी मम्मा, खुद को इतना निर्माण बनाया आपने वो मीठी मम्मा। दुर्गुण हरणी ओ दुर्गा सबको दुर्गुणों से तुम दूर किया। गंभीर धीर सरल स्वयं को सद्गुणों से भरपूर किया। हुक्म में हुक्म चला रहा है कह करके चुपचाप चली, पीछे आगे तेज चली और सबसे आगे तो निकली। कहती नहीं सब करके दिखाया आपने वो मीठी मम्मा, उदाहरण बन के दिखाया आपने वो मीठी मम्मा। ऐसा गायन योग्य बनाया आपने वो मीठी मम्मा, रूप वो पूजन योग्य रचाया आपने वो मीठी मम्मा। आपने वो प्यारी मम्मा। आपने वो मीठी मम्मा।
ओम शांति, ओम शांति। कि जब सब बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि मम्मा हमारे से दूर नहीं, हमारे समीप है, हमारे साथ है। तो यज्ञ में कहते हैं कि भाई कोई धन से सेवा करते हैं, कोई कुछ सेवा करता है, तो जितना धन से सेवा करेंगे उतना वो महल मिलेगा, वो करेंगे। लेकिन मम्मा एक एग्जाम्पल है जो एकदम, बाबा कहते थे मम्मा गरीब निवाज, बाबा को जो गरीब निवाज का टाइटल देते हैं वो मम्मा के हिसाब से। मम्मा कुछ नहीं लाई लेकिन क्या बन गई, विश्व महारानी से लक्ष्मी बन गई। किस आधार से लक्ष्मी बन गई? जो बाबा ने कहा वो अपने जीवन में धारण किया। मम्मा इकोनॉमी की अवतार थी, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मम्मा कहते थे ये जो हम भोजन का कणा दाना भी वेस्ट करते हैं, तो मम्मा कहते थे ये कणे दाने नहीं है लेकिन क्या है, सोने की मोहर है, हम सोने की मोहर वेस्ट कर रहे हैं। इतना ब्रह्मा भोजन का महत्व देती थी, यज्ञ की एक एक चीज का इतना महत्व रखती थी। तो हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, एग्जाम्पल बनना है, लास्ट सो फास्ट जाना है। जैसे मम्मा नंबर वन गई ना, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो आज तो माताओं का दिन है, कितना भाग्य है जो ऐसी ऊंची पालना मिली। तो उस पालना को हमें अपने जीवन में धारण करना है। कितनी मम्मा के अंदर निरहंकारिता थी, हर एक बच्चे से मम्मा बहुत रिगार्ड से बात करती थी, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो। मम्मा सदैव क्या कहती थी, आप कहती थी। कोई ब्रिजमोहन भाई कहते थे कि मम्मा आप हमको आप क्यों कहते हैं, हम तो छोटे हैं, तुम कहना चाहिए। लेकिन नहीं, एक आदर्श दूसरों को सिखाने के लिए भी अपने जीवन में ऊंची धारणा होनी चाहिए। तो मम्मा का इतना वात्सल्य था, इतना प्यार था, कैसे भी व्यक्ति मम्मा के आगे आ जाए तो हमेशा नतमस्तक हो जाते थे, माँ माँ करके पुकारते थे। कितना भी विरोधी हो लेकिन जब तक मम्मा और बाबा के आगे नहीं आते हैं तब तक वो विरोध करते रहते हैं। जब और मम्मा और बाबा की छाया में आ जाते हैं, मम्मा और बाबा को देखते हैं तो सब भूल जाते हैं और कोई भी विरोध करना सब छोड़ देते हैं। तो इतनी महान कैसे बने, तपस्या, त्याग और सेवा। तो जितनी हमारे जीवन में त्याग होगा, तपस्या होगी, अटल निश्चय, एक बल एक भरोसा, वो अपने जीवन में जब हम धारण करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है जो हम भी वो सतयुग के घराने में वो मम्मा बाबा के साथ, श्री कृष्ण और राधे के साथ रास करने के लिए हम भी उसके साथ भाग ले सकते हैं। लेकिन वो भाग लेने के लिए हमें भी जैसा उससे प्यार था वैसा हमें भी उससे प्यार रखना है। किसे प्यार था? बाबा से प्यार और मुरली से प्यार। तो जितना बाबा और मम्मा, बाबा और मुरली से हमारा जितना प्यार रहेगा उतना ही हम नंबर वन जा सकते हैं। तो मुरली का एक एक शब्द कैसे मम्मा धारण करती थी, जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा कहाँ बैठती थी, बाजू में बैठ करके वो ऐसे देख करके ऐसे बैठती थी, जैसे एक एक शब्द अपने जीवन में धारण कर लेती थी। तो इतना प्यार, हम बच्चे भाग्यवान हैं, पद्मापद्म भाग्यशाली हैं जो इतनी महान आत्माओं का सौभाग्य मिला है। जब भले हम मम्मा बाबा को इस कल्प में नहीं देखा है, लेकिन जरूर अगले कल्प में हम उसकी पालना लेवे ऐसी बाबा से आशा रखेंगे। ओम शांति।
मम्मा डे है आज और मेरी प्यारी मीठी मम्मा ने मुझे जगा दिया 2 बजे को ही, वो भी एकदम फ्रेश। हमेशा सोचती थी 2 AM को उठ जाऊं, पर आज मम्मा ने ही उठा दिया, पहले कभी नहीं उठ पा रही थी। थैंक यू मम्मा, ये मुझे मम्मा का गिफ्ट है आज मुझे। वो भी मम्मा ने मुझे अनुभव दे के तब उठाया। मम्मा ने अनुभव कराया कि अभी समय अभी भी आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होने की प्रयास में लगे रहने का नहीं है, बल्कि अभी समय है स्वयं आत्मिक स्थिति में ही रहना और शांति, स्नेह, प्रेम, अपनापन की वाइब्रेशंस फैलाना, तरंगे फैलाना, और उन तरंगों में कोई विघ्न, समस्या, परिस्थिति, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव रूपी कंकड़ पत्थर पड़के तरंगों में रिपल्स न आ जाए, एकदम स्थिर तरंगे हो, और ऐसी शांति के तरंगे हो जिसमें कोई अशांत वृत्ति वाले आए तो भी उनका भी वृत्ति शांत हो जाए, हम उनके वृत्ति से जरा सा भी प्रभावित ना हो, ऐसी हमारी स्थिति बनानी है। अब यही समय चल रहा है। खाना भी एकदम सात्विक, जो कोई इंद्रिय चंचल होके वृत्ति के तरंगों में उछल न लाए। एक श्रेष्ठ योगी का खाना उसके शांत तरंगों को कायम रखने वाला हो, इंद्रियों को आकर्षित करने वाला नहीं, स्थिरता हो मन में। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम रिजर्व होके चल रहे हैं ताकि कोई आके हमारी स्थिति को डगमग न कर दे। सामने वाला चाहे कैसा भी रहे, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी वृत्ति लेके चल रहे हैं। कोई अपनापन या एक्सेप्टेंस ही नहीं है सामने की व्यक्ति के या आत्मा के लिए, जबकि बाबा बोलते हैं स्वभाव संस्कार मिला के चलो। उनके स्वभाव संस्कार जान के तब संबंध संपर्क में आओ ताकि कभी भी किसी के टकराव में न आवे। बाबा बोलते हैं गुण और शक्तियों के दान देने को। ऐसे में हम हमारे सामने की ही आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पूरे विश्व को क्या दान दे पाएंगे। मान लो अगर योग में बैठ के सकाश दिए तो भी वो जैसे अपना सेल्फ एस्टीम मेंटेन किया कि जाओ जो देना था योग में दे दिया, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसे ही सही होता तो बाबा, मम्मा, सारी दादियां क्यों सबको लेकर के चलते, सब एकदम गंभीर होके ही चलते, जैसे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। मम्मा कहती थी मैं वैकुंठ की स्मृति में ही चलती हूँ, शरीर में आती हूँ, सिर्फ प्रेम, सुख, आनंद देना होता है। तो हमने प्रैक्टिकल में कितनों को अपनाया अपने आत्मा भाई करके, सिवाय अपनाए के हम उनको अपनापन महसूस नहीं करा पाएंगे। रमणीकता चाहिए। सतयुग में हम ऐसे अकेले अकेले गंभीर होके नहीं रहते, सब मिल के रास करते खुशी में रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो चेक करना है हमें अपने आप को कि हमने दूसरों को कितना मान सम्मान दिया, चाहे वो कितना भी अज्ञानी आत्मा हो। मान सम्मान देना मतलब दिल से अपना के शुद्ध प्रेम भाव से बात करना, ना कि गंभीरता का प्रदर्शन करना। यहाँ मधुबन में आई तो शांति स्तंभ के पास बैठ के योग करते थे 12-13 मई से। इस समय योग करते समय शुरू शुरू में कुछ दिनों में सिर्फ ऐसा अनुभव होता था कि जैसा कुछ अब बचा ही नहीं है, एकदम लास्ट चल रहा है। जैसे युद्ध के बाद एकदम शांत हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है, वैसे एकदम सब खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। एक और बात, जब हम कुछ अवस्था तक पहुंच जाते हैं तब हमें महसूस होता है कि कौन सी आत्मा कौन सी स्टेज से होते जा रही है या उसका पोजीशन क्या है। पर ये जान के हमें अपनी अवस्था का घमंड न आए, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। सिवाय सम्मान के, रिस्पेक्ट के, दिल से कुछ न निकले। हमें इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है कि मम्मा गई, बाबा गए, दादियां गई। सब अव्यक्त स्वरूप में हमें देखते हैं और पूछते हैं, सिर्फ गुणगान ही करते रहना है या बनना भी है? क्योंकि हमारा असली स्वरूप ही अव्यक्त स्वरूप है। पहले अव्यक्त, उसके बाद निराकारी। मगर हम सीधे निराकारी में ही पहुंचते हैं, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं। फाइनल स्टेज आसान लगता है गंभीरता के वजह से। अव्यक्त स्थिति में सब रमणीकता, सातों गुण, शक्तियां चाहिए ना, तो मुश्किल लगता है, इसलिए सीधे फाइनल पे जाते हैं। मगर अब सबको अपना ना है।
ओम शांति। दिव्य गुणों की जननी हमारी मम्मा मातेश्वरी जी। दिव्य गुणों की धारणा में मम्मा बहुत ही अद्वितीय और सर्वगुण संपन्न थी, अथवा यूं कहा जाए कि क्रिएटर ऑफ डिवाइन वर्च्यूज। गंभीरता, सरलता, सहजता, अंतर्मुखता, साक्षी दृष्टि, मधुरता, प्रसन्नता, अचल और डोल एकरस स्थिति और ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय आदि अनेक गुणों की चैतन्य मूर्ति थी। मम्मा के दिव्य गुणों की परीक्षा एक बार उस समय हुई जब कोटा और धौलपुर के भवनों को खाली कराने का राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया। उस समय भवनों में कुछ बुजुर्ग माताएं और समर्पित यज्ञ युवा वत्स भी थे, और भवनों में इतना सारा सामान भरा हुआ था कि उनको लोड करने के लिए कई ट्रकों की जरूरत थी। उस समय यज्ञ की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा उस समय मधुबन से बाहर किसी सेवा के लिए गए हुए थे। तो कल्पना कीजिए कि ऐसी विकट परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होगी। पूरी तरह से हलचल भरी, चिंता भरी सोच होगी, और हम सारी एनर्जी उस परिस्थिति पर विचार करने के लिए, उसका कोई भी रिजल्ट सॉर्ट आउट करने के लिए लगा देंगे। मम्मा ऐसी परिस्थितियों में विशेष योग का प्रयोग किया करती थी। उस समय भी एक विशेष योग का कार्यक्रम रखा गया। मम्मा जो स्वयं उस यज्ञ की सेनापति थी, उनकी अचल अटोल और एकरस स्थिति को देखकर सभी ब्रह्मवत्स भी निसंकल्प स्थिति में रहे, और बड़ी परिपक्वता के साथ मम्मा ने उस परिस्थिति को पार किया। भाई जगदीश चंद उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले, और उन्होंने ये जो डिसीजन राज्य सरकार ने भवनों को खाली कराने का दिया था, उसको रुकवाने के लिए उन्होंने 3 महीने का समय ले लिया, और जयपुर के गृह सचिव से मिलके आबू के एसडीएम को उन्होंने ये रुकवाने का, ये 3 महीने का समय उन्होंने जो लिया, वो पत्र उन्होंने वहां आबू के एसडीएम को भिजवा दिया। तो ऐसे में मम्मा के दिव्य गुणों की परीक्षा भी हुई, और हम सभी को इस सत्यता का भी प्रत्यक्षीकरण हुआ कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज के दिन 24 जून को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम मम्मा के दिव्य गुणों को धारण करें और अपने ब्राह्मण होने की सत्यता को प्रमाणित करें। सो मम्मा वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन वर्च्यूज एन एंजल ऑन अर्थ। ओम शांति।